Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Jab hum sukh ko kisi daire mein bandh lete hain, to uska naam chota sukh ho jata hai. और जैसे जैसे वो दायरा बढ़ता जाता है वो सुख भी बढ़ता चला जाता है। तो बड़े सुख की अपेक्षा छोटा सुख दुख मालूम पड़ता है और छोटे सुख की अपेक्षा बड़ा सुख सुख मालूम पड़ता है। ये रिलेटिव चीजें हैं। तो सुख जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता है, सुख जहां से आ रहा है वो छोटा बड़ा होता है। अब यदि ये आत्मा अनंत हो तो इसमें का जो स्वरूप है वो सुख है वो भी अनंत ही कहलाता है। माने छोटे छोटे दुख जो हैं वो हमको फिर परेशान नहीं करते। अनंत आनंद, अनंत आनंद का मतलब ये मत समझ लेना कि हाथ चौड़ा करके के इतना बड़ा आनंद या ऊंचा करके के इतना ऊंचा आनंद। वो कितना भी हाथ इधर को करो चाहे ऊंचा करो वो तो सीमित ही रहेगा, परिच्छन ही रहेगा। और जब हम सीमाओं का ख्याल नहीं करते हैं, बोले ये भी आनंद वो भी आनंद, इनके बिना भी आनंद इनके सहित भी आनंद, आनंद आनंद आनंद, तो वो जो आनंद की अखंडता है ना, उसका जो ज्ञान है वही असल में ब्रह्मानंद कहलाता है। ये लक्ष्य जो है वो मैं उसको स्पष्ट कर रहा हूं। तो अब तक के बात का जो सार है वो ये हुआ कि जीवन तो चलता रहता है, इसका कोई लक्ष्य नहीं है। इसमें ये देखो कि मैं कौन हूं, मेरा क्या लक्ष्य है। तो मेरा लक्ष्य है अपने स्वरूप में देश काल वस्तु से अतीत जो आनंद है उसकी उपलब्धि अर्थात ब्रह्मानंद, ये मेरा लक्ष्य है। एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो इंटेलेक्चुअलिज्म है ना, बुद्धिवाद, तो ये बुद्धिवाद में सुख तो है लेकिन वो ब्रह्मानंद नहीं है। इसलिए जो पंडित लोग हैं उनको बौद्धिकता का सुख तो मिलता है लेकिन ब्रह्मानंद नहीं मिलता। और जो भक्त लोग हैं उन्हें भाव का आनंद तो मिलता है लेकिन उन्हें भी ब्रह्मानंद नहीं मिलता। और जो कर्मी हैं, हाथ पैर हिलाने वाले, उसी में आग्रह करने वाले, उनको भी थोड़ा बहुत कर्म विषय का आनंद मिलता है लेकिन उनको भी ब्रह्मानंद नहीं मिलता। और जो समाधि लगाते हैं उनको वृत्ति निरोध का आनंद तो मिलता है लेकिन ब्रह्मानंद उनको भी नहीं मिलता। तो बोले ये क्या फिर ब्रह्मानंद है ना? बोले ये ब्रह्मानंद जो है इन सब आनंदों में जो एक आनंद है उस आनंद को यदि आप पहचान लो तो उसी को ब्रह्मानंद बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें आनंद नहीं है, कर्म में भी आनंद है, भाव में भी आनंद है, बौद्धिकता में भी आनंद है, लेकिन इन में आनंद है। और वो आनंद क्या है? तो बोले आप होते हो तब आनंद का अनुभव होता है। मैं ना हूं और मुझे बहुत बढ़िया ज्ञान हो जाए, किसको होगा ज्ञान? आनंद तो मेरे बिना सिद्ध नहीं होता, इसलिए वो मेरा स्वरूप आनंद है। जब ये पता चल जाता है तो फिर आएगा इसमें कि मनुष्य के आनंद और ब्रह्मा जी का आनंद, ये सब उपाधिगत आनंद जो है एक दूसरे से श्रेष्ठ है। उपाधि का आनंद लो, हमारे शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज कहते हैं, वो कहते हैं कि विष्णु भगवान भी भगवान है और गधा भी भगवान है। तो फिर गधा गधा रटो। तो बोले नहीं, जितनी उपाधि सूक्ष्म होगी श्रेष्ठ होगी उसी का ग्रहण किया जाता है। तो ब्रह्मानंद कहने का यह मतलब नहीं है कि पनाले का पानी पीने लगे बोले ब्रह्मानंद आ रहा है। उस ब्रह्मानंद का तो सिर्फ इतना ही अर्थ है कि उपाधि से उसका मतलब तो नहीं है कोई, लेकिन जितनी श्रेष्ठ और सूक्ष्म उपाधि होगी उसमें जो आनंद आता है वो ब्रह्मानंद के समीप है। आत्मा के समीप बुद्धि है कि मन है कि इंद्रियां हैं कि शरीर है, समीप जो है सबसे समीप बुद्धि है। इसलिए ज्ञान का जो आनंद है उसमें आत्मानंद सबसे ज्यादा झलकता है। भाव का जो आनंद है वो उससे थोड़ा नीचे है, कर्म का जो आनंद है वो उससे नीचे है, और स्थूलता का आनंद, शरीर का जो आनंद है, मैं मोटा हो गया, मैं स्वस्थ हूं, नारायण, ये आनंद और भी घटिया है। और फिर इस शरीर से बाहर निकलो तो और स्थूलतर आनंद होता चला जाता है। बोले हमारे 10 फ्लैट हैं आदर्श सोसाइटी में। एक एक आदमी ने 10 फ्लैट ले रखे हैं ना, तो वो काहे का आनंद है? वो फ्लैटों का आनंद नहीं है, वो अभिमान जन्य आनंद है। मेरे इतने फ्लैट हैं, एक अभ्यासज आनंद होता है। जैसा अभ्यास करने लगो, देखो नाम जप करते हैं ना, तो जब शुरू करते हैं, जो झोली माला से करते हैं उनकी बात कह रहा हूं, तो वो उंगली तो बाहर निकालनी पड़ती है क्योंकि ये उंगली तो जप में लगनी नहीं चाहिए। अब यही एक तपस्या हो जाती है। हाँ, ये उंगलियां दुखने लगती हैं शुरू शुरू में, तो फिर जब अभ्यास हो जाता है तो उसी में मजा आने लगता है। तो एक अभ्यासज आनंद होता है, एक अभिमान जन्य आनंद होता है, और नारायण एक विषयगत आनंद होता है, एक सुषुप्ति का निर्विषयगत आनंद होता है, उसमें कोई विषय नहीं है फिर भी आनंद है। तो ब्रह्मानंद कहने का यह मतलब नहीं है कि कोई विषय मत पकड़ो, लेकिन सूक्ष्मतम विषय पकड़ो, श्रेष्ठतम उपाधि स्वीकार करो, उसमें जो आनंद का अनुभव होगा वो ब्रह्मानंद के समीप होगा। जो आत्मा के जितने समीप होता है उसमें आत्मानंद उतना ही छलकता है। अच्छा देखो, मान लो हम तो ठीक ठाक बैठे थे, कोई चिंता नहीं थी, अब मन में आया कि इस समय रसगुल्ला मिलता तो बड़ा अच्छा था। अब क्या हो गया, रसगुल्ला तो है नहीं पास में, तो मन में दुख की वृत्ति आई कि नहीं, ये अभाव की वृत्ति, तो उससे दुख हुआ। अब नारायण ये तो कल्प वृक्ष है आत्मा जो है, तो आ गया रसगुल्ला कहीं से, चाहे आप ही खरीद लाए चाहे कोई और दे गया, रसगुल्ला आ गया। अब रसगुल्ला आपकी जीभ पर गया तो बड़ा आनंद आया। अब काय का आनंद आया ये रसगुल्ले का? वो जो रसगुल्ले की मांग थी उस मांग की पूर्ति का आनंद आया। अगर भीतर से मांग न होती तो रसगुल्ला खाने से आनंद नहीं आता। डायबिटीज जिनको होती है वो खाते भी जाते हैं और दुखी भी होते जाते हैं। क्या करें, जीव तो मांगती है और उन्हें ये भी मालूम है कि ये शुगर बढ़ा देगा, तो दुखी भी होते रहते हैं। तो ये आनंद जो है, ये बहुत इसके पैरामीटर्स हैं, कंडीशनड आनंद है संसार में जितना भी आनंद, तो होने दो उसे। इसमें आगे आएगी बात, बोले आप आनंद की अगर इच्छा करते हो तो सूक्ष्मतम उपाधि में आनंद प्रकट होने। समाधि का आनंद श्रेष्ठ है और विषय की प्राप्ति में भी समाधि लगती है। ये एक रजनीश की किताब है ना, वो संभोग से समाधि, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी ना, बड़ी उसकी आलोचना भी हुई, लेकिन उसका जो दृष्टिकोण है मैं उसे समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात समझाने के लिए कह रहा हूं। सबसे ज्यादा स्त्री पुरुष विषयक जो सुख होता है, सबसे ज्यादा आनंद उसमें क्यों आता है? इसलिए आता है कि आपकी सारी इंद्रियां उस समय उसी में घुस जाती हैं, स्पर्श सुख, रूप सुख, शब्द सुख, नारायण, सारे सुख की जो अभिव्यक्ति है जब एक ही केंद्र में होने लगती है तो वही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मालूम पड़ता है। अब एक तो ये विषय का आनंद हुआ और एक जो है समाधि है, वहां वृत्ति नहीं है लेकिन वहां आनंद है, तो वो आनंद कौन सा है? वृत्तियों की निरुद्ध अवस्था में, अंतःकरण में जो आत्मा का प्रतिबिंबन होता है वो आत्मा ही का आनंद, और विषय के भोग में जो आनंद है वो भी आत्मा का ही आनंद है। लेकिन भाई देख लो, गदले पानी में सूर्य का परछाई देखो और शुद्ध जल में सूर्य की परछाई देखो, परछाई तो दोनों है लेकिन आनंद की अनुभूति दोनों में अलग अलग होगी, क्वालिटेटिवली फर्क पड़ता है। तो ये जो हमारा अध्यात्म विज्ञान है ये कहता है कि हम उपाधियों का निराश नहीं करना चाहते, क्योंकि जीवन रहते कोई उपाधि उससे अलग नहीं हो सकता है, आत्मा अलग ही है, अधिष्ठान रूप से तो सब में घुसा हुआ है और साक्षी रूप से सबसे अलहदा है। और अधिष्ठान में जो होता है वो अध्यस्त होता है, मिथ्या होता है, इसलिए अधिष्ठान पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप अपने को ऐसा जान लो कि मैं साक्षी हूं, स्वयं प्रकाश अधिष्ठान हूं, तो आपको सब जगह आनंद भी मिल जाएगा और सबसे आप अछूते भी रहोगे। इसी को ब्रह्मानंद बोलते हैं। अब कहते हैं कि ब्रह्मानंद का साधन क्या है, कैसे मिले ब्रह्मानंद? तो सब लोग अपने अपनी तरफ खींचते हैं। कर्मी कहते हैं कि जब तक आप धर्म नहीं करोगे तब तक ब्रह्मानंद नहीं मिलेगा। योगी कहते हैं समाधि लगाओ। तो देखो, चाहे समाधि लगाओ ये भी कर्म है, और चाहे हाथ पैर हिलाओ ये भी कर्म है। ये गीता में भगवान कृष्ण ने क्या बढ़िया बात बोली है, कर्मण्य कर्म यह पश्येत, अकर्मणि च कर्म यह, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृत्स्न कर्म कृत। कर्म में जो अकर्म देखता है और अकर्म में भी जो कर्म देखता है वही मनुष्य में बुद्धिमान है, और जो ऐसा जानता है उसने संपूर्ण कर्म कर लिए, माने सब कर्मों का फल उसको प्राप्त हो जाता है। तो कर्म में अकर्म देखना क्या है? अरे, आत्मा के बिना तो कोई सिद्धि नहीं होती। तो कर्म माने क्रिया, कर्ता, करण, कर्म है। क्रिया के ये तीन रूप हुए कारक। इसमें आप देखो आत्मा कहां है, तो वहां कर्ता के रूप में वो बैठा है, और करण में घुसा हुआ है अधिष्ठान के रूप से, और कर्म फल के रूप से फिर वापस मिल जाता है। एक ही आत्मा। तो समस्त कर्मों में आत्मा की उपस्थिति देखो। और अगर तुम कहो कि हम कर्म नहीं करेंगे, तो कर्म का ना करना भी कर्म है। ये आग्रह करना कि हम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अव्वल तो ये नहीं, कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, भगवान ने कहा ही वचन है ये कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए हुए रह नहीं सकता। कर्म तो होगा उससे, लेकिन कर्म का करना और कर्म का न करना ये दोनों कर्ता के अधीन है। तो अगर आप ये आग्रह करते हो कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तब भी आप कर्ता ही हो, और यदि ये आग्रह करोगे कि मैं कर्म ही करूंगा, तब भी आप कर्ता ही हो। जो कर्ता होता है वो पहले भी भोगता होता है, पीछे भी भोगता होता है, और जो कर्ता भोगता होता है वो फल से बंधा होता है। इसलिए वो तो जीव ही रहेगा, ब्रह्मत्व का अनुभव कभी उसे नहीं हो सकता। तो उपाधि श्रेष्ठ होनी चाहिए और उसका साधन भी श्रेष्ठतम होना चाहिए। तो शंकराचार्य भगवान ने बहुत लंबा भाष्य लिखा है, इसमें शिक्षावल्ली का अंत जहां होता है और ब्रह्मानंद वल्ली के शुरू होने से पहले, उसमें वो कहते हैं कि कर्म से मोक्ष नहीं हो सकती। मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि कर्म से नहीं हो सकती। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि एक तो गीता जी में कर्म है, उससे तो मोक्ष हो सकती है, और एक जो है कर्मकांडात्मक जो कर्म है वो मोक्ष उत्पन्न नहीं कर सकता। कर्मकांडात्मक मोक्ष, सब दुनिया में जितने कर्म कर रहे हैं वो कर्मकांड ही कर रहे हैं, माफ करना, इतनी महत्व बुद्धि है। अगर कोई पैसे वाला हो और उससे आप ये कहो कि 10 रुपए में तुम्हारा पुण्य हो जाएगा, तो उसे जचता नहीं है, बोले 10 लाख का तो बताओ कम से कम। 10 लाख का कर्म करने को तय, उससे जितना फल होगा, बोले उसका 100 गुना मिलता है, तो 10 लाख का 100 गुना मिलेगा ना। अब 10 रुपया खर्च करेंगे तो उसका 100 गुना कितना मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि न 10 लाख से मिलता है, न 10 से मिलता है, बिना कामना के 10 खर्च करो तब भी मिलता है, और बिना कामना के 10 लाख करो तब भी मिलता है। आपको भगवान ने दिया 10 लाख खर्च करो, नहीं दिया है तो 10 में ही संतुष्ट हो, मोक्ष पुरुषार्थ तो दोनों में मिल जाएगा। तो गीतोक्त जो गीता में जो कर्म योग बताया है, निष्काम कर्म योग जिसको बोलते हैं, उससे तो अंतःकरण फटाफट शुद्ध हो जाता है, और इसी जीवन में नहीं तो 3 जीवन में तो मिल ही जाता है मोक्ष पुरुषार्थ। और ये जो कर्मकांडात्मक मोक्ष है, यो कर्म है, इसमें तो कर्तापन और भोक्तापन ही दृढ़ होता जाता है। मैंने इतना किया है, इतना इसका फल मिलेगा, ये फल होता है, इस फल के लिए मैं कर रहा हूं। जितना कर्म कांड है वो निष्काम नहीं होता है, सब सकाम होता है, और सकाम होने से वो भोक्ता उसमें जिंदा रहता है। अच्छा, तो कर्म का फल अनित्य होता है, यही मुख्य है कि कर्म का फल अनित्य होता है, इसलिए मोक्ष उससे नहीं मिल सकता। अनित्य मोक्ष को लेकर के ही क्या करेंगे, और यहां तो संसार में जो कुछ मिला हुआ है सब अनित्य ही है, तो मोक्ष भी यदि अनित्य ही हो तो ऐसे मोक्ष को ही लेकर क्या करेंगे, संसार ही सही ठीक है फिर तो। तो अनित्य फल होता है कर्म का, इसलिए वो नित्य मोक्ष उत्पन्न नहीं कर सकता। और अनित्य की भी उन्होंने 4 कैटेगरी बना दी, उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य और विकार्य। अब ये पारिभाषिक शब्द हैं, समझ में आमे याद रहे, आमे तो याद रखना, नहीं तो समझ लो। कर्म से कोई चीज बनती है, मकान बनाना चाहते हो तो कर्म करना पड़ेगा, वो ज्ञान से नहीं बनेगा। कर्म का फल उत्पाद्य होता है, उत्पन्न करता है। महाराज श्री कहते थे कि ये पीडब्ल्यूडी विभाग है गवर्नमेंट का, ये पीडब्ल्यूडी विभाग। अगर आप कुछ निर्माण करना चाहते हो तो कर्म करना पड़ेगा, और अगर निर्माण नहीं करना चाहते सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो उसमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो स्वरूप का ज्ञान है वो तो ज्ञान से ही मिल जाता है, उसमें कर्म तो अनावश्यक है। अच्छा, जो सर्वव्यापक वस्तु है उसे कहां से लाओगे? इसलिए आप्य भी नहीं हो सकता। आप्य माने कहीं दूसरी जगह, हमारे पास तो नहीं है, दूसरी जगह है वहां से ले आवे उसे मोक्ष को। तो आत्मा तो सर्वव्यापी है, इसलिए वो आप्य भी नहीं हो सकता, तो कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बोले नहीं, ऐसा करें कि हम अंतःकरण बहुत सुंदर बना लें तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो बोले ये तो अंतःकरण तो सुंदर बन जाएगा, कोई शक नहीं है, उसमें जो सुख होगा वो भी अच्छा मिलेगा, ये भी शक नहीं, वो इसमें शक नहीं है, लेकिन वो आत्मज्ञान करा देगा, ऐसा नहीं है। आत्मज्ञान की तो जो विधि है सोई विधि है, तो वो संस्कार ये नहीं है अभिप्राय कहने का, और विकार ये नहीं है, माने मिल करके कभी बिछुड़ता नहीं। या तो आत्मा किसी को मिला नहीं, और जिस दिन भगवत कृपा से मिल जाएगा उस दिन के बाद में फिर कभी बिछड़ेगा नहीं, क्योंकि वो प्राप्ति की प्राप्ति है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। अच्छा, कर्म करने का जो अधिकारी है वो रागी है। अगर राग नहीं होगा फल में तो वो कर्म नहीं कर सकता। और ज्ञान का माने मोक्ष का जो अधिकारी है वो विरागी है विरागी माने नंगे रहने वाले नहीं है, और विरागी माने सन्यासी भी नहीं है, माने जिसको कहीं सुख बुद्धि नहीं होती, आत्मा के अतिरिक्त कहीं सुख नहीं है। परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोधाच सर्वम दुखम विवेकना। पतंजलि जी कहते हैं कहीं परिणाम में दुख है, कहीं भोग करते ही समय दुख है, कहीं कोई भी आप भोग करो कर्म करो उसका संस्कार पड़ जाता है, ये भी दुख है, और कहीं सत्वगुण नीचे चला गया रजोगुण ऊपर आ गया तो दुख आ जाएगा, तमोगुण ऊपर आ गया तो दुख आ जाएगा। गुण की वृत्तियां जो है इनमें विरोध होता रहता है। तो जो विवेकी लोग हैं वो तो हमेशा दुखी ही रहते हैं इसलिए लोग विवेक ज्ञान मार्ग से डरते भी हैं। तो ज्ञान का अधिकारी जो है वो विरागी होता है। अब इतने में समझ लो बस कि कर्म करने मात्र से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, परंतु कुछ तो कर्म करना पड़ेगा, गुरुजी के पास जाना भी पड़ेगा, सुनने की क्रिया भी करनी पड़ेगी। यद्यपि इसको हम क्रिया नहीं मानते हैं, लेकिन सुनोगे ही नहीं, आपके कान ही नहीं है ठीक, तो कैसे ज्ञान होगा? और बोले सुन तो रहे हैं लेकिन बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं है, तो बुद्धि में शक्ति भी उत्पन्न करनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों के लिए ये सारी उपासना योग कर्म करना पड़ता है, बाकी तो ज्ञान तो एक चोट में होता है। अरे जनक, तू ब्रह्म है, अष्टावक्र ने कहा और उसको ज्ञान हो गया, इतने ही में ज्ञान हो गया ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो क्यों हो गया भैया? यहां तो जो है इतने बरस हो गए सुनते सुनते फिर भी जो है स्वीकृति नहीं होती। तो बोले नहीं, उसकी तैयारी पूरी थी, वो इसीलिए सब कर्म कर रहा था। आप भी इसीलिए कर्म करो, माने उद्देश्य यदि यही कर लो कि हम कर्म कर रहे हैं तो इसी के लिए, भोग कर रहे हैं तो इसी के लिए, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो इसी के लिए। अगर लक्ष्य एक है तो फिर तैयारी में पूरी होने पर तत्वमसी मात्र से ही बोध हो जाता है। कुछ असंभावनाएं होती हैं मन में, कुछ विपरीत भावनाएं होती हैं, कुछ प्रतिबंध होते हैं, उन सब प्रतिबंधों की निवृत्ति होने पर ही ज्ञान होता है। तो जल्दबाजी तो इसमें नहीं करनी चाहिए, जब होना होएगा हो जाएगा, लगे रहना चाहिए। तो ये ब्रह्मानंद वल्ली जो है, अब ये कल से, ये तो भूमिका के रूप में आज मैंने कर दी, ब्रह्मानंद वल्ली कल से प्रारंभ करेंगे। ब्रह्मवेद आपनोति परम, जो ब्रह्मवेदता है उसी को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसको तैत्तरीय क्यों बोलते हैं? इसके ऋषि तित्तिर हैं, तित्तिर। तो महाराज जी कहते हैं कि तीतर को तित्तिर बोलते हैं। तीतर पक्षी होता है ना, तो कहीं मंडूक बोलता है, मेंढक बोलता है, मांडूक के उपनिषद जो है, कहीं मंडूक बोलता है, कहीं खच्चर बोलता है श्वेताश्वतर उपनिषद, कहीं तित्तिर पक्षी बोलता है। तो बोलने वाला कौन है? कागभुषुंडी भी तो गरुड़ को ज्ञान देते हैं। बोलने वाले का शरीर क्या है इससे मतलब नहीं है, बोलता क्या है, और जिसको सुना रहा है वो तुम्हारी भाषा समझता है कि नहीं? अब आप तो संस्कृत समझते नहीं और हम संस्कृत में झाड़े चले जा रहे हैं, तो उससे ज्ञान नहीं होगा। आपकी बोली में आपको समझाने वाला कोई सद्गुरु मिल जाए तो ज्ञान होने में देर नहीं लगती। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।